हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री कार्तिक मास की जय। गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सब भगवत गीता अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपने अवश्य पढ़ा होगा और सुना होगा कि ये भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। शायद इस तथ्य को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, शायद है भी, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोला करते थे, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। थोड़ा सा सुख जब मिलता है तो भूल जाते हैं कि दुनिया में कितना दुख है। दुखालयम अशाश्वतम, ये सब हमने सुना है। तो आप सोच रहे होंगे इतना सुंदर पर्व है और पर्व की कथा के प्रारंभ में ही यह दुख की बात कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि ऐसे उत्सव ही हैं जो कि हमें संसार के दुख से मुक्त करा सकते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो संसार के दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से ऐसे नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं कह सकता। तो हर एक के जीवन में प्रकृति की योजना से एक के बाद एक दुखों के, समस्याओं के लहर आते जाते हैं जीवन में, कभी मन में, कभी शरीर में, तरह तरह के समस्याएं आती रहती है। और इसकी वजह से लोग निराश हो जाते हैं, कभी कभी गलत चीजों का आश्रय लेते हैं, जैसे शराब है या और कुछ मादक द्रव्य है। परंतु भगवान बड़े कृपालु हैं, ये जो दुख संसार में देते हैं भगवान, हमारे भलाई के लिए देते हैं, ये भगवान की कृपा है। साथ साथ में वो इन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए उपाय भी देते हैं, वो है उनकी सेवा और भक्ति का पथ। और वैसे तो भक्ति के अनेक अंग हैं। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि 9 अंग हैं साधन भक्ति के, तो इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चिन नव लक्षणा। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के 9 लक्षण, 9 अंग हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। तो कभी कभी हम श्रवण करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी स्मरण करते हैं, कभी अर्चना करते हैं, कभी वंदना करते हैं। और ये जो 9 के 9 मार्ग हैं, भक्ति के अंग हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से समर्थ हैं हमें आध्यात्मिक परिपूर्णता प्रदान करने के लिए। फिर भी किसी एक ही रास्ते को, किसी एक ही अंग को हमेशा के लिए सुबह से रात तक 24 घंटे और जीवन भर बनाए रखना बहुत मुश्किल है। वो हरिदास ठाकुर जैसे कर सकते हैं, दिन भर बस जप करते रहे। हम ऐसे नहीं कर सकते। थोड़ा जप करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर कुछ सुनते हैं, फिर कुछ प्रसाद लेते हैं, फिर दर्शन लेते हैं, थोड़ी विविधता हमारे भक्ति में अच्छी होती है, जिससे कि मन बना रहता है भगवान के ऊपर। और साथ साथ में जब भगवान ऐसे उत्सवों की या पर्वों की व्यवस्था करते हैं, तो ये ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनमें ये 9 के 9 अंग जो हैं, इनका पालन हो जाता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चना, सब कुछ हो जाता है इसमें। इसलिए ये जो उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, ये भक्ति के जननी हैं। माधव तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संबंधित जो भी दिन हैं, उनके संबंध में जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनके गुणों का कुछ गान हो रहा है, ये सब उत्सव होते हैं। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का रास्ता स्वीकार करने मात्र से संसार के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक कष्ट आते रहेंगे, परंतु इनको सहन करने की शक्ति हमें भक्ति के द्वारा मिलती है, और साथ साथ में हमें ये निश्चित जानकारी भगवान देते हैं कि जब कोई व्यक्ति आजीवन इस तरह से मेरी शुद्ध भक्ति करेगा तो फिर इस जन्म के अंत में मृत्यु के उपरांत वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। फिर भगवान के धाम में जाने के बाद फिर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे इन सारे कष्टों से, और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। उनके निजी संग में और उनके भक्तों के संग में हम भगवान के साथ लीलाओं में शामिल हो जाएंगे। तो ये इन उत्सवों के द्वारा भगवान हमें एक झलक दिखला रहे हैं कि उनके आध्यात्मिक जगत में जीवन कैसे होता है। तो जब ऐसे पर्वों में हम आते हैं, शामिल होते हैं भक्तों के संग में, मंदिर में, तो हमारे कष्टों को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं और भगवान के ऊपर ध्यान ज्यादा लग जाता है, दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती है। हाँ, केवल कष्टों से मुक्त होने के लिए हम भक्ति नहीं करते, भले प्रारंभ में ऐसे हम करें, परंतु जैसे जैसे हम आगे भक्ति में बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि केवल अपने कष्टों से मुक्त होने की कामना रखना भी ये एक स्वार्थ है। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे मन में भावना ये होने लगती है कि मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और यही मेरे भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं और आएंगे भी आगे, उनको आने दो, जाने दो, लेकिन भगवान की भक्ति हम करते रहेंगे। तो ये भावना भक्त की हो जाती है। फिर भी आखिर हम इंसान हैं, हम सबकी सहन शक्ति की भी सीमाएं होती हैं, और बीच बीच में ऐसे आनंद के अवसर होते हैं, इनका पूरा लाभ हम उठाते हैं। आप में से कितने भक्त हैं जो आयकर भरते हैं? आयकर मतलब इनकम टैक्स। आप कमाते हैं, कुछ कर देना होता है ना सरकार को। आप में से कितने भक्त आयकर देते हैं? कई हैं भक्त, है ना। तो आप तो जानते होंगे कि आप पैसे कमाते हैं, इसलिए तो आपको आयकर देना पड़ता है। तो जब पैसे कमाते हैं तो आप ये भी सोचते होंगे ना कि कर को कैसे कम किया जाए। सोचते हैं कि नहीं? ईमानदारी से कहिए, सोचते हैं। तो कर कम करने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है गैर कानूनी, दूसरा होता है कानूनी। तो गैर कानूनी ढंग से करना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी ढंग की बात कर रहे हैं। कानूनी ढंग से भी आप अपने कर को कम कर सकते हैं। सरकार की कई योजनाएं होती हैं, आप सरकार के इस किसी योजना में पैसे भर के रखिए तो आपको उस हद तक कर कम देना पड़ेगा। तो सरकार हमें, हमसे कर लेती है, परंतु कर कम करने के लिए भी साधन या उपाय कोई देती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ही हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने यहां भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम बना के रखा है। वही भगवान जो हमें कष्ट देते हैं तो इन कष्टों से निकलने का उपाय भी देते हैं। तो बताते हैं कि देखो, तुम्हारे कर को, दुख रूपी कर को कम करने के लिए यहां देखो उत्सव है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति के रास्ते में समय समय पर उत्सव होते रहते हैं। हर महीने कुछ न कुछ ऐसे होते रहता है, कम से कम कुछ नहीं तो दो एकादशी तो होते ही होते हैं। प्रतिदिन आप देखिए, प्रति महीने में कुछ न कुछ है। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, ऐसे उत्सवों को का आयोजन वो करते हैं, वो ऐसे हमारे कार्यक्रम में लगा देते हैं कि हम उनको मनाएंगे, हमारे सारे दुखों को भूल जाएंगे और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति जो है या लगाव मन में बढ़ जाएगा। इसलिए हरिवासर की एकादशी के दिन को हरिवासर कहते हैं। भगवान से संबंधित जितने भी दिन है वो माधव तिथि कहते हैं उसको। तो एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, वामन द्वादशी है, ऐसे कितने सारे उत्सव हैं। तो अभी शरद ऋतु के समय ये दो और उत्सव भी है, एक जो आज है शरद पूर्णिमा और कल से फिर कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। ये शरद पूर्णिमा ये आश्विन महीने का अंतिम दिन है, फिर कल कार्तिक प्रतिपदा शुरू हो जाएगा, कार्तिक महीना शुरू हो जाएगा। तो आज का दिन भी बहुत पावन है और आने वाले कार्तिक महीने का प्रत्येक दिन भी पावन है और इसका पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए हमारे भक्ति के लिए। तो शरद पूर्णिमा ये क्या है? यहाँ आप कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों में इसी दिन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। और कभी कभी अनेकों बार ऐसे होता है कि समाज में फसल काटने का समय हो जाता है तो उसके लिए उत्सव होता है और फिर सांस्कृतिक कई और कार्यक्रम हो जाते हैं। लेकिन हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे लिए शरद पूर्णिमा का एक बहुत ही अद्भुत और विशेष महत्व है। वो महत्व क्या है हम सब कृष्ण भक्तों के लिए? वैसे देखिए जितने भी ऋतु हैं हमारे वर्ष में, उनमें से सबसे आकर्षक, सबसे मंगलमय, सबसे आनंदप्रद ये शरद ऋतु है। कौन से ऋतु हैं अब बताइए? अब चलो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु अब चल रहा है। आश्विन और कार्तिक ये दो महीने शरद ऋतु है। तो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु, अर्थात अभी जाड़े का मौसम शुरू हो गया है परंतु इतने तीव्रता से नहीं, वो दो महीने के लिए रहता है। उसके बाद शिशिर, जब ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म अर्थात गर्मी। तो ऐसे छह ऋतु हैं। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, किसी को अच्छा नहीं लगता। ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी, किसी को अच्छा नहीं लगता। बारिश के मौसम में बहुत झंझट झमेले हैं, बाहर नहीं जा सकते, ये वो कितने सारी चीजें हैं। लेकिन शरद ऋतु, इसमें अन्य जितने भी गुण हैं और ऋतु हैं उनके अच्छे गुण दिखाई पड़ते हैं। ना ज्यादा ठंडी होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना बारिश होती है। अभी आजकल पता नहीं क्या होता है, अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है मौसम में। अभी तक बारिश गिर, आज भी बारिश गिर रही है, तो ये मनुष्यों के कारण सब मौसम में गड़बड़ी हो रही है। तो खैर, लेकिन ना ज्यादा ठंडी है, ना ज्यादा गर्मी है और वर्षा ऋतु के बाद होने के कारण सब कुछ हरा भरा होता है, फिर भी गीला नहीं होता, कीचड़ वगैरह नहीं होता है। आज तो है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब बरसात बंद हो जाएगी तो हम ये देखेंगे। बरसात के मौसम में भी सब कुछ हरा भरा होता है, परंतु सब जगह कीचड़, ये वो, कहीं जाना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु वर्षा ऋतु का जो लाभ है कि सब कुछ हरा भरा है, वो लाभ शरद ऋतु में होता है। लेकिन जो एक दुर्गुण है वर्षा ऋतु के कि कीचड़ सब जगह है, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो खैर, ये शरद ऋतु जो है ये बहुत ही विशेष है और वृंदावन में खास करके ये और भी सुंदर हो जाता है। तो आश्विन के अंत में जो अंतिम दिन है और कार्तिक के प्रारंभ में ये जो एक पूर्णिमा है जो शरद पूर्णिमा कहलाती है, ये इतना ये सारे वर्ष का सबसे सुंदर दिन माना जाता है। और ऐसे सुंदर दिन में सारे वृंदावन में शरद ऋतु सबसे श्रेष्ठ है, शरद ऋतु में से ये शरद पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ है। और शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पे खड़े होकर बांसुरी बजाई, क्योंकि वो अपने प्रिय गोपियों के साथ में रास लीला करना चाहते थे। तो जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया तो सारे गोपियां आकर्षित होकर विवश होकर अपने अपने घरों से निकल पड़ी। थोड़े गोपियां घर से नहीं निकल पाई क्योंकि उनको परिवार के सदस्यों ने अनुमति नहीं दी जाने के लिए। खैर, जो निकल पाई, कोई अनुमति से कोई बिना अनुमति से निकल पाई, सब सीधे श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। तो ये है स्वाभाविक आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति। इस तरह का आकर्षण जो है वो और कहीं नहीं दिखाई देता है। रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, ऐसे बताया जाता है कि जो गोपियों की उपासना है उसकी तुलना और कहीं भी नहीं पाई जाती। यहां तक कि वैकुंठ में भी नहीं इस तरह का प्रेम, कृष्ण प्रेम पाया जाता है। तो गोपियां जाती हैं श्री कृष्ण के पास में, तो श्री कृष्ण उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेते हैं और कहते हैं कि यह नहीं आना चाहिए आपको बीच रात में, आपको वापस घर जाना चाहिए और फिर घर जाके मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और इस रास्ते से ही ऐसे जब श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, तो इसलिए अब वापस चले जाओ। इस तरह से ऐसे 5 अध्याय हैं दशम स्कंध में, जिसको रास पंचाध्याय कहते हैं, जिनमें कि यह रास लीला का वर्णन है। वास्तव में जो रास लीला का वर्णन है वो एक ही अध्याय में आता है, परंतु इसके पहले 4 अध्याय और हैं जो कि रास लीला के लिए एक पृष्ठभूमि है। तो फिर गोपियां वहां यहां वहां घूमती रहती हैं श्री कृष्ण के खोज में। जब श्री कृष्ण निकल जाते हैं उनके बीच में से, तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत सुंदर गीत गाए जाते हैं और अंततः रासलीला श्री कृष्ण गोपियों के साथ में करते हैं। अब ये रासलीला एक ऐसी लीला है जो कि विवादग्रस्त है, भक्तों के बीच में नहीं लेकिन साधारण समाज में। जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं जानते, जो भगवान कृष्ण के भक्ति के रास्ते से भलीभांति परिचित नहीं होते, और परिचित होते भी हैं परंतु वृंदावन के भक्ति के रास्ते से परिचित नहीं होते हैं, वो अक्सर इस रासलीला को गलत समझते हैं। तो रासलीला के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं और इसलिए लोग, ऐसे कई लोग हैं जो कि श्री कृष्ण की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, ये एक अनैतिक कार्य है, श्री कृष्ण को नहीं करना चाहिए था। वैसे क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं इसलिए वो मनुष्यों के जीवन में जो एक नीति होनी चाहिए, जो एक नियम होना चाहिए इत्यादि, वो सोचते हैं कि वैसे भगवान भी इनके अधीन होने चाहिए। जैसे हम लोग के नियमों के इस नीति के अधीन होते हैं, होना चाहिए, तो भगवान को भी होना चाहिए। तो हमारे जो सीमाएं हैं उनका आरोप हम भगवान के ऊपर लगाते हैं कि भगवान के लिए भी ऐसे होना चाहिए, परंतु ये लोग नहीं जानते हैं कि भगवान का स्थान क्या है। तो खैर, संक्षेप में थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं कि रासलीला वास्तव में है क्या। रासलीला का वर्णन हम नहीं करेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी ये योग्यता नहीं है कि हम रासलीला का वर्णन करें, और ना हमारे योग्यता है कि हम ये रासलीला को विस्तार में सुने। लेकिन जो तत्व है कि रासलीला के बारे में, इसके इसको जानना हमारे लिए थोड़ा आवश्यक है। वास्तव में यह रासलीला जो है ये कोई भौतिक कार्य नहीं है, ये कोई संसार के पुरुष स्त्री के संबंध के की चर्चा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, सदैव दिव्य होती हैं। परंतु हमें ऐसे पवित्र संबंधों का ज्ञान न होने के कारण हमारे संसार का जो अनुभव है उसका आरोप भगवान के ऊपर लगाते हैं कि यहाँ संसार में जो हम देखते हैं तो वैसे ही श्री कृष्ण और गोपियों के साथ होना चाहिए, इस तरह से हमारी मान्यता होती है। परंतु ऐसा नहीं है। तो आइए हम संक्षेप में सुनते हैं कि रासलीला की दिव्यता के प्रमाण क्या है, क्यों हमें जानना चाहिए कि रासलीला कोई भौतिक कार्य न होकर ये भगवान की दिव्य लीला है। सबसे पहली बात देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति के मूल्य को जानना चाहते हैं तो हम किन से पूछेंगे? जो जानकार व्यक्ति हैं उन्हीं को जाने पूछेंगे ना। जैसे यदि हमारे हाथ में कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति कहता है ये सोना है, अभी हम तो सराफ नहीं है तो हम जान नहीं पाएंगे ये वास्तव में सोना है या कुछ और है, कुछ नकली सोना है, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे आदिपति प्रभु के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई ये बताओ ये असली सोना है नकली सोना है क्या है? तो फिर देखेंगे, फिर कहेंगे हाँ ये असली है नकली है, जो भी है वो कह देंगे। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस व्यक्ति उस वस्तु को जानता है, और फिर यदि वो कहे कि ये वास्तविक वस्तु है, ये मूल्यवान है, तो फिर हम मानते हैं कि हाँ ये मूल्यवान है। तो उसी तरह से जब हम आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते हैं तो किन की बातों को हम मानेंगे, किन की बातों को हम महत्व देंगे, मूल्य देंगे? जो बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि हुए, भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, इनकी बातों को हम महत्व देंगे, उनको मानेंगे हम? तो आइए सुनते हैं थोड़े ऐसे उदाहरण महान भक्तों के। अब श्रीमद् भागवत में कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, कि शिव जी बहुत सबसे बड़े सबसे महान वैष्णव हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त हैं। वैसे शिव जी भी वो रासलीला में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने बहुत कुछ सुना था रासलीला के बारे में। वैसे शिव जी तो संकर्षण भगवान के उपासक हैं, राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे, सहस्रनामा विस्तुल्यम राम नाम वरानने, तो वो राम नाम लेते रहते संकर्षण का नाम, और वो कहते हैं कि राम नाम जो है वो सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम से अनेक गुना ज्यादा बलवान है। तो शिव जी ने भी सुना था कि वृंदावन की लीलाएं बहुत विशेष है, तो वो भी प्रवेश करना चाहते थे वृंदावन की लीलाओं में और विशेष रूप से रासलीला में, परंतु वो नहीं आ पाए वहां पर, क्योंकि प्रभुत्व की भावना थी कि मैं एक पुरुष हूं। परंतु वृंदावन में पुरुष एक ही है, वो है श्री कृष्ण। तो जब शिव जी वहां आए तो उनको अनुमति नहीं मिली रासलीला के स्थान में प्रवेश करने के लिए। फिर उनसे बताया गया, योग माया देवी ने कहा कि आप जाके यमुना में स्नान कीजिए। वैसे इसके बारे में अनेक कथाएं हैं, कोई कहते हैं इस सरोवर में, कोई उस सरोवर में, कोई यमुना में, तो खैर जो भी हो उनको स्नान करना पड़ा। स्नान करने के बाद जब वो बाहर निकले तो क्या देखा उन्होंने कि उनका शरीर बदल गया था और अब गोपी का शरीर प्राप्त हो गया उनको। तो ये गोपी आ गई रासलीला के स्थान पर, तो श्री कृष्ण तो समझ गए कि ये कौन है, ये इनके प्रिय भक्त शिव जी हैं जो अभी गोपी के रूप में आए हैं। फिर भी इतना होने के बाद भी शिवजी रासलीला में भाग नहीं ले पाए, केवल वो देख पाए रासलीला को। गोपी का वेश धारण करके, गोपी का रूप धारण करके वो देख पाए मात्र, शामिल नहीं हो पाए। और फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर और उन्होंने उनको एक सेवा दी कि आप रास स्थली के द्वार पर खड़े होंगे और आप यहाँ दिक्पाल बनोगे, द्वारपाल बनोगे, रास लीला की रक्षा आप करोगे। किस तरह की रक्षा, किनसे रक्षा? जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनका प्रवेश यहाँ वर्जित है, इसलिए आप केवल उन व्यक्तियों को प्रवेश प्रदान करेंगे जो योग्य हैं, अन्यों को अब बाहर रखेंगे। ये केवल एक शारीरिक रूप से प्रवेश करने की बात नहीं है, ये आंतरिक प्रवेश है, हार्दिक प्रवेश, चेतना का प्रवेश। तो आज शिव जी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो शिव जी भी देखिए कितने महान भक्त, सबसे बड़े भक्त होने के बाद भी वो क्यों लालसा कर रहे थे कि मुझे रासलीला में अंदर प्रवेश करना है। अब शिव जी की बात तो दूर रही, स्वयं लक्ष्मी देवी जो कि भगवान नारायण की पत्नी है वैकुंठ में, वो तो भगवान के साथ हमेशा रहती हैं, उनके सानिध्य में रहती हैं, फिर भी उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो धूली है उसे प्राप्त करना है, मुझे वृंदावन का रज चाहिए। तो उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। विहाय कामान सुचरत दृढ़व्रता यद वांछया श्री ललना चरत तपो। ललना मतलब जो बहुत ही श्रेष्ठ स्त्री है, महिला है लक्ष्मी देवी। तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि किसी न किसी तरह से वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करें वृंदावन में। परंतु जब लक्ष्मी देवी ने प्रयास किया तो क्या हुआ, उनको अनुमति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी तक लक्ष्मी देवी अपने महारानी होने के भाव को त्याग नहीं पाई, न पुरुष भाव वहां चलता है वृंदावन में और न ही कोई महारानी का भाव लेके जा सकते हैं। पुरुष भाव का मतलब केवल पुरुष नहीं, स्त्री का भी हो सकता है। जब कोई भोग करने की भावना हो या अपने आप को विशेष समझने की भावना हो और वृंदावन के जो गोपियां हैं उनके पद चिन्हों में चलने की जो क्षमता न हो तो फिर हम ऐसी लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी भी प्रवेश नहीं कर पाई और आज भी वो तपस्या कर रही है। तो क्यों चाहती थी वो? लक्ष्मी देवी जब भगवान के सानिध्य में सदैव रहती हैं तो क्या देखा उन्होंने रासलीला में और वृंदावन के कृष्ण लीला में कि उनकी इतनी इच्छा हुई कि मैं भी यहां पे जाऊं? तो शिव जी हो, लक्ष्मी देवी हो, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, वो भी चाहते थे कि वो वृंदावन की लीला में आ जाए, प्रवेश करें। उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में यमुना के तट पे बैठकर कुछ भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सरल प्रकार का भोजन जो है श्री कृष्ण ले रहे थे, दही फल इत्यादि चावल। तो उन्होंने अपने योग के ऐश्वर्य को प्रकट करने का प्रयास किया लेकिन अंततः वही मोहित हो गए। इसे ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। जब ब्रह्मा जी जान गए कि वास्तव में श्री कृष्ण की वृंदावन लीला कितनी विशेष है तो उन्होंने प्रार्थना की कि मैं वृंदावन में एक घास का तिनका बनना चाहता हूं ताकि जो गोपियां हैं और अन्य ब्रजवासी हैं उनके चरण कमल मेरे सर के ऊपर पड़ जाएं और उनके चरणों की धूलि भी मुझ पर पड़ जाए। और फिर नारद मुनि की बात भी ऐसे ही हुई। नारद मुनि को श्राप मिला था, आप जानते हैं ना, दक्ष प्रजापति द्वारा। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया था, पहले 10,000 फिर 1,000। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया था, किसी के भी लड़के को ब्रह्मचारी बनाते हैं तो गुस्सा आ जाता है माता पिता को। तो फिर दक्ष प्रजापति ने शाप दिया नारद मुनि को कि मैं ये शाप देता हूं कि आपकी भौतिक सृष्टि में कहीं भी किसी भी एक स्थान में टिक कर नहीं रह पाओगे, आपको भ्रमण करते रहना होगा। और नारद मुनि तो भ्रमण वो बोल रहे थे ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे प्रचार करने के लिए अवसर मिल जाएगा, परिव्राज का आचार्य जो सब जगह घूमते रहते हैं प्रचार करते हैं भगवान की वाणी का, भगवान के नाम का। फिर एक बार श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि अरे नारद देखो तुम सब जगह घूम रहे हो, तुम ब्रज में आके रहो एक स्थान पर, और यदि तुम्हारे मन में ये संशय है कि फिर दक्ष प्रजापति के श्राप का क्या होगा, तो मैं तुम्हें बताऊं कि दक्ष प्रजापति ने यह कहा था तुमसे कि तुम सारे भौतिक सृष्टि में घूमते रहो, किसी एक भी स्थान में नहीं रह पाओगे, परंतु ये जो मेरा ब्रज धाम है, वृंदावन है, ये भौतिक सृष्टि नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत ही है साक्षात, इसलिए तुम यहां आके रहो, इसलिए फिर कोई समस्या नहीं होगी। फिर नारद मुनि आए ब्रज में, और नारद मुनि की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन में, चाहे वो कृष्ण के जन्म के समय हो, राधा रानी के समय हो, मथुरा में भी कंस के पास गए, तो नारद मुनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो नारद मुनि भी रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका देह पुरुष का था, तो उनको भी बताया गया आपको भी गोपी का देह प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने जाकर कुसुम सरोवर में स्नान किया, और जब बाहर निकले तो उनका रूप भी एक गोपी का बन गया था, नारदीय गोपी। अब वो प्रवेश कर गए रासलीला में, उन्होंने भी देखा, भाग नहीं ले पाए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े भक्त हैं सारे ब्रह्मांड के स्तर पर, तो वो सब रासलीला को इतना मानते हैं कि वो इतनी तपस्या करते हैं रासलीला का दर्शन करने के लिए। प्रवेश तो मालूम है, वो शायद उनको नहीं मिल सकता। फिर हम जान सकते हैं कि रासलीला का स्थान क्या होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनके कांति को स्वीकार करके आए हैं, परंतु वो सन्यासी थे, फिर भी वो रासलीला के बारे में सुनना चाहते थे। भगवान कृष्ण और गोपियों के जो लीलाएं हैं उनके बारे में वो सतत सुनना पसंद करते थे, यहां तक कि उनको अनेकों बार रासलीला के स्वप्न आते थे और उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी ऐसे स्वप्नों के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु जब इतने नियमबद्ध थे और बाहर के संसार के ऐसे कोई कथाएं नहीं सुनते थे, तो भले वो रासलीला में और श्री कृष्ण गोपियों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में वो क्यों सुनना चाहते थे। यदि ये कोई संसार का कोई संबंध होता तो अवश्य नहीं सुनते। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये जो रासलीला है भगवान की, ये दिव्य है। हमें साधु वर्तमान वर्तनम, महान साधुओं के पदचिन्हों में चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले हैं, बड़े बड़े भक्त चले हैं, जो रास्ता उन्होंने दिखलाया है सारे संसार के लिए, उस रास्ते पे हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तो यह पहला कारण है जिससे हम जान सकते हैं कि रासलीला दिव्य है और यह कि भौतिक कार्य नहीं है। और एक दूसरी बात देखिए, हम जब कोई सिनेमा की किसी सिनेमा की कहानी सुनते हैं या किसी साधारण प्रेम के उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं या लेख या कविता पढ़ते हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं? इससे क्या हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है? नहीं। इसका असर विपरीत होता है। तो यहां रासलीला के बारे में या भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करने से, ऐसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो सकता है और यहां तक कि आत्म साक्षात्कार हो सकता है केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करके। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पीछे कई कारण हैं, जिसके बारे में भगवद गीता में भी स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है, वो हम सब जानते हैं, हमने कई बार सुन लिया है। परंतु और एक कारण है जो कि वो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं आस्थितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। इसका मतलब है कि भगवान प्रकट होते हैं, वो कहते हैं मैं अवतीर्ण होता हूं भौतिक जगत में, क्यों, और वो भी एक ऐसे रूप स्वीकार करके जिसके द्वारा लोगों को लगता है कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं, मानुषम देहम आस्थितः, और भजते तादृशी क्रीड़ा, और फिर मेरी जो क्रीड़ाएं हैं, मेरी जो लीलाएं हैं, मैं उनमें दिव्य आनंद लेता हूं। तो जो समझदार और बुद्धिमान और भाग्यवान व्यक्ति होता है, जो इन लीलाओं के बारे में सुनता है, यह श्रुत्वा, जो व्यक्ति इन लीलाओं के बारे में सुनता है, तत्परो भवेत, तत्परह मतलब वो भक्त बन जाता है, तुरंत उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में भगवान की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और ये श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण ये रास पंचाध्याय के दौरान बोलते हैं। इसका मतलब है कि रास लीला के बारे में जो सुनते हैं वो प्रगति करते हैं, परंतु इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत चेतावनी भी दी है कि समय से पहले अपरिपक्व अवस्था में न हमें रासलीला के बारे में सुनना चाहिए न बोलना चाहिए, अर्थात रासलीला का जो वर्णन है, क्योंकि हम इनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। परंतु और साथ साथ में जो अधिकृत संप्रदाय है, गुरु शिष्य परंपरा है, ऐसे ही इस माध्यम से हमें समझना चाहिए। तो कई ऐसे कथाकार होते हैं जो सीधे रासलीला पर ही प्रारंभ करते हैं अपनी कथाएं, तो ये ठीक नहीं है। परंतु कहने का तात्पर्य है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की समस्त जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी शुरुआत से लेकर अंत तक जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे और शनै शनै रासलीला तक पहुंचेंगे, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और जो संक्षिप्त रूप में हम वर्णन पढ़ते भी हैं वहां पर, फिर उसके कारण हमारा हृदय अवश्य शुद्ध हो जाएगा। तो जब भगवान की रासलीला के बारे में सुन के हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है, यह श्रुत्वा तत्परो भवेत, तो यह भौतिक लीला या भौतिक कार्य कैसे हो सकता है? भौतिक कार्यों के बारे में सुन के कभी आध्यात्मिक मार्ग में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, तो यह दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण देखिए, वैसे जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो हम कोई शिकायत नहीं करते हैं जब लड़के लड़कियां खेलते हैं आपस में, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होती है किसी को, लेकिन जब बड़े व्यक्ति कुछ कर तो फिर आपत्ति होती है। तो छोटे बच्चे आपस में मिलजुल के चलते हैं, खेलते हैं, कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब रासलीला की थी तो उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। तो जब कोई आपसे कहेगा अरे आपके कृष्ण क्या है, ये रासलीला करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो बोलो उस समय कृष्ण केवल 8 साल के थे ना, क्या है आपको समस्या? आपके बच्चे भी तो खेलते रहते हैं ना 7-8 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में, ये कहने की बात है। 7 साल के आयु पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और फिर उसके बाद 8 साल के जब हो गए तो रासलीला भी की उन्होंने। खैर और भी कारण है, जो लोग इस तरह से रासलीला की निंदा करते हैं उनको ये नहीं पता कि श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण परम सत्य है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और जो व्यक्ति इस बात को पूर्णतया तत्वतः जानता है वो मेरी भक्ति में लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक व्यक्ति के उद्गम है, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो यहां पर संसार में हम देखते हैं कि पुरुष हैं स्त्री हैं, तो भगवान के धाम में भी पुरुष और स्त्री क्यों नहीं हो सकते, बल्कि होने ही चाहिए। जब यहां ये भौतिक सृष्टि जो कि भगवान की शक्तियों से उत्पन्न हुई है इसमें हम पुरुष और स्त्री देखते हैं तो भगवान के धाम में क्यों नहीं होने चाहिए। जो उनके सृष्टि में है ये कैसे संभव है कि भगवान में नहीं है या उनके धाम में नहीं है, तो उनके धाम में भी है अवश्य। अंतर ये है कि यहां सब कुछ विकृत रूप है इसलिए अपवित्र है, वहां पे सब कुछ शुद्ध है, मूल है, पवित्र है। परंतु भगवान भी अपने प्रिय गोपियों के साथ में ऐसे लीलाएं करते हैं। दूसरी बात, यदि कोई पुरुष अपने पत्नी के साथ कहीं सड़क पर जा रहा हो तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी दूसरे महिले के साथ कहीं उजार तो आपत्ति होती है, स्वाभाविक है। तो श्री कृष्ण वास्तव में पुरुष है और जितने भी अन्य जीव हैं वो सब प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण भोक्ता हैं और जितने भी अन्य जीव हैं वो सब भोग्य हैं या भोज्य हैं, इसलिए उनको प्रकृति कहते हैं। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण जीव पति कहलाते हैं, केवल गोपी पति नहीं वो जीव पति है। प्रत्येक जीव के जब वो पति हैं तो क्या वो गोपियों के पति नहीं है? गोपियां भी जो हैं वो भी श्री कृष्ण की शक्ति ही है, इसलिए फिर इसमें क्या आपत्ति किसी को होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। इस तरह से लोग भगवान श्री कृष्ण कौन है ये नहीं जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है इसको जानने की अतिरिक्त ये भी जानना चाहिए कि गोपियां कौन है। गोपियां भी कोई साधारण इस संसार की स्त्रियां नहीं है, ये पूर्ण मुक्त महिलाएं हैं। उनका शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंद है। जब भगवान श्री कृष्ण यहां पर प्रकट होते हैं वृंदावन धाम में तो वो अपने धाम को ही प्रकट कराते हैं यहां पर, फिर इस धाम में वो वहां से प्रकट हो जाते हैं। अवतरति इति अवतार है, तो ऐसे अवतीर्ण होते हैं और हम उनको अवतार कहते हैं। तो फिर अपने वृंदावन धाम में अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने माता पिता को, सबको ले आते हैं। तो गोपियां भी आती हैं और उनके साथ भगवान नृत्य करते हैं। तो नित्य रूप से उनके धाम में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते रहते हैं, ये एक नित्य लीला है भगवान की। और कभी कभी यहां भगवान प्रकट कराते हैं इस लीला को। तो जो गोपियां हैं वो भी दिव्य हैं और इसलिए ये जो संबंध है दिव्य भगवान और दिव्य गोपियों में ये भी दिव्य ही है, ये भी हमें जानना चाहिए। इस तरह से और कई कारण है लेकिन अब समय भी उतना नहीं है, परंतु इतना हम जान लें कि इस संसार के जो कार्य होते हैं वो महामाया के अंतर्गत होते हैं और जो भगवान की लीलाएं होती हैं वो योग माया के अंतर्गत होती है। इसलिए कभी भी हमें रासलीला को गलत नहीं समझना चाहिए, और यदि कोई गलत समझ रहे हैं तो इस तरह के जो तर्क हैं, जो वाद है, इसके द्वारा जो कि शास्त्रों के ऊपर आधारित हैं, इनसे हमें उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, यदि वो लोग सुनने के लिए तैयार है तो, नहीं तो वहीं से दूर जाना ही अच्छा रहेगा। तो खैर, इस दिन पर या इस रात पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी गोपियों के साथ में, इसलिए इतना पावन दिन माना जाता है। ये भौतिक सृष्टि ये आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, विकृत रूप है, इसलिए जो आध्यात्मिक जगत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, यह भौतिक जगत में उसकी निंदा होती है। क्योंकि जब कोई वस्तु समझ लीजिए कि किसी तालाब के तट पे है, जैसे पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब जब हम देखते हैं जल में, तो ऐसे प्रतीत होता है कि पेड़ जो है वो उल्टा दिख रहा है, उसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ऐसे दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब में। तो उसी तरह से ये रासलीला और भगवान श्री कृष्ण की जो अन्य लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु क्योंकि ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, तो यहाँ पे लोग इसकी निंदा करते हैं और उसको गलत समझते हैं। तो जब हम जानेंगे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार, तो फिर हम समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारे लिए ये रासलीला ये एक पूजनीय लीला है, हमारे लिए आराध्य लीला है। बस दूर से हमें प्रणाम करना चाहिए इस लीला को। भले हम इस योग्य नहीं है कि हम वो लीला में लीला के बारे में ज्यादा सुने, प्रवेश करने की बात तो दूर है, परंतु दूर से ही हम नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं और गुणगान कर सकते हैं। बस इतना हम करें और फिर धीरे धीरे से हमारे हृदय में जैसे जैसे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हुआ आश्विन महीने के अंतिम दिन में। अब कल से प्रारंभ होगा कार्तिक महीना। ये कार्तिक महीने को कहते हैं ऊर्जा व्रत का महीना या दामोदर महीना। ऊर्जा अर्थात शक्ति। तो भगवान की शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो इस महीने में तपस्या करने से, अधिक भक्ति करने से श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम भगवान कृष्ण के भक्ति के रास्ते में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना कि जो सरकार कर देती है, हमसे कर लेती है, कर कम करने के लिए भी कोई रास्ता देते हैं, उसी तरह से भगवान कृष्ण हमें कष्ट तो देते हैं, परंतु फिर कार्तिक जैसे भी महीनों को साल में लाते हैं कि चलो कष्ट है जीवन में, लेकिन कार्तिक महीने का लाभ उठाओ, ये विशेष रूप से तुम्हारे कर को अर्थात तुम्हारे दुख और कष्ट को कम करने के लिए किया है, ताकि यहां मेरी भक्ति करके तुम इतना लाभ प्राप्त करोगे कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे भगवान कहना चाहते हैं। वैसे शास्त्र में, अलग अलग पुराणों में कार्तिक महीने की महिमा पाई जाती है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि कार्तिक महीने का व्रत का पालन करने से भौतिक जो लाभ है उनका भी वर्णन सुनाई पड़ता है, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, परंतु कृष्ण भक्तों के लिए ऐसी चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। हम जब कृष्ण भक्त हैं तो हम कार्तिक व्रत या कार्तिक महीने में थोड़ी बहुत तपस्या, अधिक भक्ति आदि करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि हमारी भक्ति और सुदृढ़ हो जाए, हमारे हृदय और स्वच्छ हो जाए, भगवान के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण और भी बढ़ जाए, बस यही मात्र है। पद्म पुराण में सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक के व्रत का पालन करता है तो उसके पास यमदूत आते नहीं है, बल्कि यमदूत दूर भाग जाते हैं। कैसे दूर भाग जाते हैं? जैसे एक सिंह को देखकर हाथी भी दूर चले जाता है। वैसे हाथी तो बहुत बड़ा पशु होता है, बलवान भी होता है, लेकिन शेर ऐसे होते हैं जो कभी आके उसके गले को पकड़ लेते हैं या कुछ, तो हाथी को भी मार देते हैं कभी कभी सिंह। तो जिस सूत गोस्वामी पद्म पुराण में कहते हैं कि जैसे एक सिंह को देखकर हाथी भी कभी दूर चले जाता है, तो वैसे कार्तिक व्रत का पालन करने वाले भक्त से यमदूत भी दूर भाग के चले जाते हैं। और ऐसे कार्तिक व्रत की का पालन करने से इसकी तुलना केवल फलाने कितने हजार अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ आदि करने के फल स्वरूप हमें कोई भौतिक लाभ ही मिलेगा, परंतु भक्ति भाव से कार्तिक में यदि हमने तपस्या की तो हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कार्तिक का लाभ है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो मथुरा मंडल में अर्थात वृंदावन में वास करता है और वहां थोड़ी तपस्या करता है और भगवान कृष्ण की भक्ति अधिक करता है, तो उसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो आप सोचेंगे ऐसे कार्तिक में वृंदावन में कार्तिक महीने में जाना, इसका महत्व बहुत है। तो आप सोचेंगे कि भाई हम सब तो नहीं जा सकते, अभी देखिए सारी दुनिया वृंदावन में चली जाए कार्तिक में, तो फिर क्या होगा, हमारे मंदिरों में कौन रहेगा? और सभी लोग तो नहीं जा पाएंगे, हर एक का घर है, संसार है, नौकरी व्यापार है। तो हम लोग जो कि कार्तिक के महीने में वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वृंदावन ये हृदय की बात है। तो यहां पे राधा गोकुलानंद मंदिर में आके हमें वृंदावन का भाव का अनुभव, वृंदावन का एक वातावरण का अनुभव मिल पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कृष्ण मंदिर में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण अपने अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है और यहां पर श्री कृष्ण के भक्त इकट्ठे होकर नाम संकीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तरह तरह से भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए राधा गोकुलानंद मंदिर में यदि हम प्रतिदिन आने का प्रयास करें इस कार्तिक महीने में, और यहां पे हम श्रवण कीर्तन करें, अन्य सेवाएं करें, तो यह वृंदावन में रहने के बराबर ही होगा। एक दृष्टि से जितना ज्यादा समय हम यहां पे बिता पाएंगे उतना अच्छा है। तो कौन सी तपस्याएं हैं जो हमें कार्तिक महीने में करनी चाहिए? बहुत सरल सी चीजें हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में है। सबसे एक प्रमुख बात है कि हमें निश्चित ही प्रत्येक दिन में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को और विशेष करके दामोदर रूप को, यहां पे दामोदर रूप की विशेष पूजा होती है कार्तिक महीने में। इसलिए माता यशोदा जब श्री कृष्ण को उखल से बांध रही हैं, ये सुंदर दृश्य को याद में रखते हुए हम लोग दामोदराष्टकम गाते हैं। तो सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि हमें प्रतिदिन ये दामोदराष्टकम गाना चाहिए और दामोदर भगवान को दीप दान करना चाहिए। तो कार्तिक महीने में भगवान को दीप अर्पण करने के अनेक लाभ हैं, भौतिक भी हैं, परंतु हमें भौतिक लाभों से कोई परवाह नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, बहुत लाभ हमें मिलेगा। इसलिए जहां भी आप हों, आप मंदिर न भी आ पाए किसी दिन पर, तो अपने घर में तो कम से कम कीजिए। और यदि घर के बाहर भी हैं आप, समझ लीजिए आपके कोई व्यापार के कार्य से, नौकरी के कार्य से आपको भ्रमण करना पड़े, कहीं जाना पड़े, जहां भी आप जाएं थोड़ा समय अवश्य निकालें दामोदर को और कृष्ण को दीपदान करने के लिए। चाहे आप कहीं दूसरी जगह आके होटल में ठहरे हुए, होटल में भी कर लीजिए, छोड़िए मत उसे। आपके साथ में भगवान श्री कृष्ण दामोदर का कोई चित्र आदि कुछ लेके जाइए साथ में हमेशा। फिर वहां जाएंगे, फिर वहां कोई दीप आदि सब भी लेके जाइए और वहां अर्पण कीजिए। तो पहली बात कौन सी थी, रोज दामोदर अष्टकम भक्तों के साथ में गाना चाहिए। भक्तों के साथ में नहीं आ सकते तो घर में गा लीजिए। दूसरी बात, रोज दीप दान कीजिए, हर एक जहां भी आप हो वो निश्चित रूप से कीजिए। तीसरी बात, कोई भक्ति के अंग को बढ़ाइए जैसे आप चाहते हैं। अलग अलग भक्त जो हैं अलग अलग ऐसे व्रत रखते हैं या कोई संकल्प लेते हैं, इतने आसानी से बस हल्के से व्रत मत लीजिए। जैसे कोई जोश में आके व्रत ले लेता है, मैं रोज 64 माला करूंगा, लेकिन फिर एक दो दिन करने के बाद भारी पड़ जाता है कि मुश्किल है, नहीं होता है, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कोई संकल्प लीजिए जो आप जानते हैं कि आप पालन कर पाएंगे, भले आपको थोड़ा कष्ट हो, कष्ट तो होना चाहिए, उसके बिना तपस्या की बात कहा है, तो थोड़ा अधिक आपको परिश्रम करना पड़े, लेकिन ऐसा परिश्रम जो कि जिसकी जो कि आपके क्षमता के भीतर है, जो आप कर पाएंगे। तो कोई भक्त ऐसे हैं जो ऐसे संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन मैं भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ूंगा अलग अलग। कोई भक्त ऐसे व्रत लेते हैं कि मैं रोज कम से कम 32 माला जप करूंगा कार्तिक महीने में। इस तरह से भक्ति से संबंधित अनेक संकल्प या व्रत भक्त लोग लेते हैं, तो आप भी कुछ ले लीजिए जैसे आपकी इच्छा, जो आप ठीक समझते हैं, जो आप कर पाएंगे, ऐसे व्रत आप लीजिए, ठीक है। और जब तपस्या की बात आती है तो एक किसी आपके प्रिय खाद्य वस्तु को आप त्याग दीजिए इस एक महीने में। कोई कहता है कि मुझे मीठे वस्तु बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, त्याग दीजिए। कोई कहता है कि मैं इस महीने में मिर्ची त्याग दूंगा, ठीक है, त्याग दीजिए। आशा करते हैं कि इस महीने में मिर्ची त्याग करने के बाद थोड़ी आदत लग जाएगी बिना मिर्ची की, फिर आगे चल के भी नहीं लेंगे। तो जो भी आपके एक प्रिय वस्तु है तो उसको एक किसी या ज्यादा भी हो ऐसे त्याग दीजिए। और भोजन के बारे में, प्रसाद के बारे में भी आप देख लीजिए, अति मत कीजिए कुछ। वैसे कार्तिक महीने के नियम बहुत कड़े हैं, चातुर्मासी के नियम बहुत कड़े हैं, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि हम सब बेहोश हो जाएंगे उनको सुन के कि कौन से ये इतने कड़े नियम है। परंतु जो ऐसी एक शारीरिक तपस्या है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जल्दी प्रातः काल में जल्दी उठना, यदि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मंगल आरती में आइए यह मंदिर में, नहीं हो सके तो घर में कीजिए, क्योंकि समस्या हो सकती है सुबह सुबह घर से आना, कोई वाहन ना हो या कुछ हो, कोई समस्या हो सकती है तो घर में कीजिए। और जहां तक जप की बात है, अभी यहाँ मंदिर में यहाँ भक्त लोग इकट्ठे होकर जो भी आना चाहते हैं आपका भी हार्दिक स्वागत है। सारे दिन भर में आप जब भी आ सकते हैं, जब भी आप चाहें, आपके लिए जब सुविधाजनक हो तब आइए, परंतु प्रातः काल में आके जप करेंगे तो बहुत अच्छा, और उसके बाद में भी दिन में करिए। परंतु प्रयास ये रहेगा भक्तों का कि रोज इस महीने में, कार्तिक महीने में 32 माला जप करेंगे। हरि बोल बहुत हल्का सुनाई दिया है। अब सोच रहे होंगे कि हृदय धड़कन, अब आगे क्या बोलने वाले, क्या और करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए, आपके समय पर आइए, 32 माला रोज कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके उतना करिए, लेकिन ज्यादा करिए। 32 माला आप सोचते हैं मुश्किल है, तो चलो 24 माला का संकल्प लीजिए, 20 माला का संकल्प लीजिए, तो जप बढ़ा लीजिए और हम सब यह मंदिर में मिलके जप करेंगे, ठीक है। तो यह भी एक है। साथ साथ में जो हमने कहा, प्रातः काल में उठ के स्नान करना चाहिए, और भी कोई शारीरिक दृष्टि से कोई तपस्या करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। थोड़े भक्त भक्त जो है वो बिस्तर में नहीं सोते हैं कार्तिक महीने में, नीचे जमीन पे सोते हैं, लेकिन ऐसा देखिए कि ठंडे जमीन पे सो के फिर कहीं बीमार ना पड़ जाए, ये भी सब देखिए, फिर 32 माला नहीं हो पाएंगे। तो थोड़े समझदारी से काम लीजिए, ठीक है। और ये भी बताया जाता है कि दान देना इस कार्तिक महीने में कृष्ण सेवा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत भक्ति में लाभ मिलता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं कार्तिक महीने के बारे में, परंतु रोज यहां मिलके हम लोग शाम को दीपदान भी करेंगे, भजन कीर्तन होंगे, और जो बड़े बड़े उत्सव होंगे कार्तिक महीने में, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर उत्सव हैं, उनको भी हम मिलकर मनाएंगे, ठीक है। श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री कार्तिक मास की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।